चुनावों के नतीजे अब तक तो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल करवट ले रहा है कि क्या सरकार द्वारा डबल डिसोल्यूशन का कदम सही था। प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के इस कदम पर विपक्षी खेमे में से तो आलोचनाएं उठ ही रही हैं, मगर उनकी पार्टी के भीतर भी कुछ सुगबुगाहट हो रही है। लीजिए सुनते हैं ये रिपोर्ट और फिर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल का डबल डिसोल्यूशन का ये कदम सही था या कि गलत। लेबर पार्टी पहले ही प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के डबल डिसोल्यूशन निर्णय पर सवाल उठा रही है, क्योंकि नतीजे जैसे आ रहे हैं उनके मुताबिक तो इस निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह ही उठ रहा है। लेबर के फ्रंट बेंचर ब्रेंडन ओकॉनर ने एबीसी पर बोलते हुए कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री टर्नबुल के लिए एक संकट बन के रह गया है। उन्होंने अपनी आलोचना प्रधानमंत्री द्वारा संसद के कोअलिशन के ऑस्ट्रेलियन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कमीशन को पुनः जागृत करने के प्रस्ताव को रोकने पर आधारित की है।
On the double dissolution, I mean, this has been a disaster for Malcolm Turnbull. He went to the election, called an election early. You might remember he prorogued the parliament, or in fact, he managed to convince the Governor-General to do so. Based on this double dissolution, he mentioned the ABCC four times in 56 days. He spoke more about it last night after the election than he did during the election campaign. It was a phony war. The people of Australia were concerned about healthcare and jobs.
ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार के मंत्रालय में ही कुछ प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं कि अगर सरकार चुनाव जरा पहले करवा लेती तो कोअलिशन के नतीजे बेहतर रहते। अगर चुनाव इससे जल्द करवाए जाते तो श्री टर्नबुल द्वारा टोनी एबट को सफलतापूर्वक चुनौती देने के बाद उनकी लोकप्रियता की लहर ऊंची थी और उस लहर पर सवार होकर वो बेहतर नतीजे पा सकते थे। रिसोर्सेस मंत्री जॉश फ्राइडनबर्ग ने स्वीकार किया है कि पहले के ओपिनियन पोल्स में कोअलिशन के पक्ष में और ज्यादा मत पड़ने के संकेत मिल रहे थे।
He's not going to get into that hypothetical because we'll never know. But clearly when Tony was the leader, we were behind in the polls. Now, we went up in the polls significantly earlier this year. Election wasn't called and now we've had an election later in the year. But I think, you know, Malcolm Turnbull still remains a popular figure for the broad number of Australian people.
Attorney General George Brandis कहते हैं कि double dissolution का उपाय चुनावों के लिए रणनीति नहीं थी, बल्कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कमीशन को पुनः जागृत करने की एक रणनीति थी। चैनल 9 पर बोलते हुए उन्होंने कहा,
The double dissolution strategy was a course of action decided on by the government for a specific purpose, and that was to get two industrial bills through a joint sitting if need be. Now, it may well be, it seems likely, in fact, that there won't be a majority for that. Certainly the government is not going to have a majority in the joint sitting. But the double dissolution was for that specific purpose. It wasn't part of a broader electoral strategy.
Malcolm Turnbull ne apne chunavon ke baad wale ratri ke bhashan mein Labour ko Building and Construction Commission aur Medicare ke unke prachar par aade haathon liya. उन्होंने दोबारा लेबर पर सरकार की मेडिकेयर नीति के बारे में झूठ बोलने का आरोप भी लगाया, मगर विपक्ष के फ्रंट बेंचर रिचर्ड माल्स ने 9 नेटवर्क को बताया कि लेबर सरकार पर इस मुद्दे पर आलोचना की वजह रखती है।
On the issue of Medicare, it is clear that Medicare is being frozen. They don't deny it, and we're going to unfreeze it. And it was absolutely a legitimate issue on which people would
vote. अब जबकि पूरा ध्यान दो मुख्य पार्टियों पर केंद्रित हो रहा है, ऐसे में वन नेशन नेता पॉलीन हैंसन के संसद में आने की खबर अनदेखी सी हो रही है। सुश्री हैंसन 1996 में प्रकाश में आई थी और वो 20 सालों बाद क्वींसलैंड की सेनेट सीट की मुख्य स्पर्धक है। सेनेटर निक ज़ेनोफोन की टीम साउथ ऑस्ट्रेलिया की 3 सेनेट सीटें पाने की उम्मीद में है, और श्री ज़ेनोफोन ने सेवन नेटवर्क पर बोलते हुए कहा कि उनकी विचारधारा पॉलिन हैंसन से अलग है, मगर वे उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं।
I fundamentally disagree with a number of aspects of her agenda, her views on immigration, on Islam, but I will sit down and work constructively with anyone in the parliament for the common good. Even if I fundamentally disagree with someone, if they're elected to the parliament, I will do my best to engage with them constructively without compromising my beliefs that immigration is a good thing for this country.